एक पेपर से पता चलता है कि व्यावसायिक भूमिकाओं में लैंगिक असमानता की मौजूदगी कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती संख्या के बावजूद प्रमुख उद्योगों में बनी रही है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी की एक नई रिपोर्ट कहती है कि लिंग के आधार पर असमानता के उच्च स्तर अभी भी हैं। 1980 के बाद से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में 41% की वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी कार्यबल के स्पष्ट महिला और पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्र हैं। निर्माण और एसटीईएम क्षेत्रों में महिलाओं का बहुत कम प्रतिनिधित्व है, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि जैसे उद्योग शामिल हैं। वास्तव में पहले से ही महिला प्रधान शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महिलाओं का अनुपात बढ़ा है। सीडा की सीईओ मिलिंडा सिलेंटो कहती हैं कि एक अलग कार्यबल व्यक्ति के साथ साथ कार्यबल की उत्पादकता के लिए हानिकारक है।
If you've got barriers to people working in sectors based on their gender, it means at an individual level, people aren't able to do the work that they want to or they're good at. It means that we're limiting flexibility in workplaces and we're actually putting a lid on productivity. And I think one of the best examples of that is the construction sector, which is very male-dominated. And recent research there has shown that when you increase diversity and when you increase the number of women working in that sector, you see improved communication, you see improved productivity, improved safety, and actually improved well-being amongst men working in the sector, so better mental health, for instance.
रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के माता बनने पर उन्हें मदरहुड पेनल्टी यानी मातृत्व दंड का अनुभव होता है। इसमें पाया गया कि अपने पहले बच्चे के पालन पोषण के पहले 5 वर्षों में महिलाओं की कमाई औसतन 55% कम हो जाती है, जबकि पुरुषों की कमाई अप्रभावित रहती है। कमाई में ये गिरावट चाइल्ड केयर और अन्य अवैतनिक कार्यों में वृद्धि से मेल खाती है और बदले में कई महिलाओं को अंशकालिक या अधिक फ्लेक्सिबल कम भुगतान वाली भूमिकाओं में ले जाती हैं। सिडनी यूनिवर्सिटी में लिंग कार्य और रोजगार संबंधों की प्रोफेसर रे कूपर कहती हैं कि ये विभाजन कार्यस्थल में लैंगिक असमानता पैदा करता है।
Male dominated sectors tend to be better paid and they tend to be more of the path to advancement and power within organizations. So if women are cut out of those areas, that means that there's a real inequality in terms of things such as earnings across the life course. So when we see sectors becoming more segregated, that's really heading in the wrong direction for a modern economy.
प्रोफेसर कूपर का कहना है कि ये सामाजिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक कारकों से प्रेरित एक बेहद जटिल मुद्दा है।
This is both structural and it goes to sort of the norms about so what is seen as appropriate for a young woman to do when she grows up, so to speak, or what is appropriate for a young man to be doing when he grows up and what sort of profession he wants to move into. Those kind of norms about what's appropriate work for the different genders are really, really sticky, and they really have stayed with us despite sort of quite significant, generational change around education and participation in higher ed and vocational education and training.
कुछ प्रगति के बावजूद प्रोफेसर कूपर कहती हैं कि ऐसी संरचनाएं जो महिलाओं को देखभाल आधारित कार्यों में फंसाती हैं। वे कहती हैं कि पुरुषों को अक्सर इन भूमिकाओं से हतोत्साहित किया जाता है। कई संगठन इस तरह के काम में संलग्न होने के लिए पुरुषों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने में विफल रहने के कारण उस समस्या को बढ़ाते हैं। 1987 के बाद से महिलाओं ने उच्च शिक्षा अध्ययन वाली पुरुषों की अधिक संख्या को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में महिलाएं इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान और कृषि विज्ञान सहित एसटीईएम क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी के नामांकन का केवल 35% हिस्सा बनाती हैं। महिलाएं भी 2021 में निर्माण कार्यबल का सिर्फ 10% थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि उद्योग के नेताओं ने अक्सर विविधता पहलों पर ध्यान केंद्रित किया, जो असमानताओं से निपटने के बजाय केवल कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। कंस्ट्रक्शन यूनियन के आने वाले राष्ट्रीय सचिव जैक स्मिथ का कहना है कि महिला प्रतिनिधित्व की कमी चिंता का विषय है। श्री स्मिथ कहते हैं कि निर्माण कार्य में महिलाओं के प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
We also need to focus on how we keep women in construction. And what we're seeing is that we have a big churn in the construction industry where women come It's not a good cultural fit, and then they leave shortly thereafter. So while we focus on how we get women into construction, we as a union believe that it's just as important that we focus on how we keep women in construction, and that goes to culture, and that goes to changing culture, changing perceptions and beliefs on site. And our union has, in the last 2 years, committed itself and done a number of critical bits of work across the country in trying to change that culture.
श्री स्मिथ ने कहा कि उद्योग में लैंगिकवाद को संबोधित करना यह सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि यह महिलाओं के लिए अधिक स्वागत योग्य जगह है कि नहीं।
The construction industry is a wonderful industry in terms of the pay and conditions that you can receive, the training opportunities that you can receive, and it is unfortunate that a lot of women either feel like that they don't have a place or that they wouldn't be welcome into the construction industry. Or once they're in there, that they don't feel like it's an industry that welcomes them. And our union is committed to doing something to change that. And we hope that industry gets on board, sees this report, heeds its messages and joins us in showing that leadership and trying to change the way that the construction industry is seen.
2020 से 2021 तक लगभग 70% महिलाओं ने बच्चों की शारीरिक और भावनात्मक देखभाल करना जारी रखा, जबकि केवल 42 पुरुषों ने यह जिम्मेदारी निभाई। अनुकूल घंटों और स्थानों जैसे फ्लेक्सिबल काम करने वाले कार्यस्थलों में से केवल 5% में विशेष रूप से पुरुषों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रोफेसर कूपर का कहना है कि पुरुषों को भी लाभ पहुंचाने के लिए लैंगिक भूमिकाओं में सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है।
I think we have a real thing in Australia where we assume that men don't want to be engaged in the caring professions. I think that's a great loss for the customers and clients in those areas and for the community broadly, but it's also a great loss for men. We know that men are increasingly telling us that they want to be more engaged in social aspects of the world around them and including things like more involved in their family. So I think some changes to break down gender norms and gender stereotypes about paid and unpaid work are really, really important and will benefit not just women, but will actually benefit men and their families as well.
फेडरल सरकार ने इस साल जुलाई में होने वाले अपने अक्टूबर 2022 के बजट में पेड पैरेंटल योजना के 8 से 26 सप्ताह के विस्तार की घोषणा की। महिला आर्थिक समानता कार्यबल माता पिता के बीच छुट्टी के बंटवारे की व्यवस्था और माता पिता दोनों द्वारा ली गई छुट्टी के समय के बारे में अधिक लचीलेपन की सलाह देगा। सुश्री सिलेंटो का कहना है कि परिवर्तनों से पहले मिले रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में OECD में माता पिता के लिए सबसे कम सवेतन अवकाश योजनाएं थी।
It's going to be important to get some of the detail right too and to think not just about leave for primary caregivers but also secondary caregivers who are in Australia predominantly fathers and making sure that they're encouraged and supported to take time off as well. And so there's some more detail to be worked through. The Women's Economic Equality Task Force is having a look at that, but we think that's something that's going to be really important to get right as well.
यहाँ तक कि महिला प्रभुत्व वाले उद्योगों में भी पुरुषों के पास अधिक नेतृत्व वाले पद हैं। महिलाएं अंशकालिक काम का एक बड़ा हिस्सा संभालती हैं, जो इस असमानता में योगदान करती हैं, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रम बाजार में कम समय वाली महिलाओं के उच्च स्थिति वाले पदों पर आगे बढ़ने की संभावना कम होती है। ये बदले में पूर्णकालिक कर्मचारियों के लिए 15% के लिंग के आधार पर वेतन के अंतर को बढ़ाता है। प्रोफेसर कूपर कहती हैं कि महिलाओं को पुरुष प्रधान उद्योगों में प्रोत्साहित करना ही समाधान का एक हिस्सा है।
Another thing to do, and this is really critical, is to better value highly feminized jobs and to ensure that workers, who are mostly women, who are working in care sectors like childcare, like aged care, like disability services, are paid decent wages and have employment security that they can leverage across their life course.
प्रवासी महिलाओं के लिए तो स्थिति और भी खराब है। महिला प्रवासियों के अपने साथी के वीजा पर द्वितीयक आवेदक होने और कम वेतन वाले व्यवसायों में काम करने की अधिक संभावना है। प्रोफेसर कूपर कहती हैं कि कार्यबल में विविधता बेहतर विचारों और अधिक पूर्ति की कुंजी है।
We know that the more diverse our group is that we have working for us, the better the performance is. And that goes to a whole range of issues such as getting rid of things such as groupthink, It leads to better governance because people ask different types of questions, and it also means that we can have better reflection of the community that we're working with and the customers that we're serving. So more diversity by gender and by all of the other types of diversity items is really important for the performance of businesses and even across organisations in the public sector and not-for-profit areas.
SIDA ke report employment white paper ko saupi gayi hai, jo federal sarkar ka ek paramarsh patra hai, jo Australia ke karmchariyon ki sankhya mein sudhar ke liye ek roadmap vikasit kar raha hai. SBS से कैटरियोना स्टीराट की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया प्रियंका हतवर्णे ने।